All right, जी, once again, welcome back. My name is Sahil. You're listening to Mera FM 107.4. क्या हाल चाल? ठीक ठाक. I am all good and yeah, I'm live. And yeah, हम कहीं से भी आ सकते हैं. अभी मैं जब एलिवेटर में आ रहा था तो मुझे अयाज भाई मिले और हम बात कर रहे थे. सब खैरियत इस मुल्क में, सब खैरियत है. बच्चा पैदा हो जाए खैरियत है, हम मर जाएं खैरियत है, महंगाई हो जाए खैरियत है, पेट्रोल बढ़ जाए खैरियत है, बिजली बढ़ जाए खैरियत है, डॉलर 313 पे पहुंच जाए खैरियत है. हर चीज खैरियत है. सीरियसली, मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे. और ये किस वजह से है ये जाने दीजिए, ये बिल्कुल जाने दीजिए. ये टग ऑफ वॉर है पॉलिटिशियंस का, इसके अलावा कुछ नहीं. ये सब जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं. आई एम रियली सॉरी अगर आपको किसी से सिंपैथी हो रही है या आप ये कह रहे हैं किस, सब एक जैसे हैं भाई. खुदा का वास्ता मुझे माफ करें. पावर स्ट्रगल है जिसके लिए अवाम का सही बैंड बजाया, सही बैंड बजाया. ऐसा बैंड मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था. मतलब आई एम सॉरी, मैंने 2-3-4 अखबार तो पाकिस्तान में देखे हैं, लेकिन ये कमाल है, ये कमाल. नॉट दिस. ये जो पिछले 5 साल गुजरे जी, उन ठंड पड़ गई है. हाँ, पै गई ना. मतलब ये समझते मैं इनको ब्लेम कर रहा हूँ. नो. ये जो पिछले 5-6 साल गुजरे हैं ना, ये कमाल गुजरे. मतलब याद रहेंगे मुझे ये कि हम कितने, हमारे पॉलिटिशियंस जो थे वो बच्चे थे. अब कह रहे हैं जी मुजाकरात कर लो, ये कर लो. पहले वो कह रहे थे मुजाकरात कर लो, ये नहीं कर रहे थे. अब ये कह रहे हैं मुजाकरात कर लो, वो नहीं कर रहे. कमाल बचपना है यार. एंड दैट टू ऑन टॉप ऑफ इट, सबसे बड़ी बात ये, आप मतलब आप साजिशें कर रहे हो कि आप हमले करो, तनसीबात पे हमले करो, उधर हमले करो, उधर हमले. एंड शोहदा के जो यादगार है उनको निकाल. गलत है यार ये. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रियली रॉन्ग. इसका, इसकी तहकीकात होनी चाहिए. एंड यू नो दिस रियली रॉन्ग, यू नो ऑनेस्टली रॉन्ग. तो मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात जो है वो कहीं बेहतर हो जाएंगे या बेहतर होने वाले. नहीं होने वाले बेहतर हालात, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होने वाले. बल्कि अभी शायद कहीं मजीद खराब ना हो जाए. दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज. एनीवे, वी कैन टॉक अबाउट बहुत सारी बातें. कैन वी टॉक अबाउट लव? कैन वी? आई डोंट वांट टू. सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मेरा दिल कोई भी बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं प्यार मोहब्बत की कोई भी बात करूँ. इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट लव, इट्स जस्ट आई थिंक इट्स ओवररेटेड यार. तो मुझे लगता नहीं कि मुझे बात करनी चाहिए. बट फिर भी कुछ ऐसी चाय आ गई ना मेरी, लाओ भाई दे दो, चाय दे दो. आए, मुझे लगता है हमको ना, आप अपने गम भुलाने के लिए क्या करते हैं, अपनी परेशानियों को उसका गम गलत करने के लिए क्या करते हैं. मतलब अगर आप बहुत परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं तो आप क्या करते हैं. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाह रहा हूँ. बिकॉज सीरियसली आई वुड लाइक टू नो कि आपकी कौन सी ऐसी रेमेडी है जो आपके काम आती है, जब एकदम से आप झुंझला जाते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, कुछ नहीं पता. अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं. दिस इज ये अजीब सी बात है, उसके बाद हम गाने पे चलते हैं. मैंने बहुत सारे ऐसे पार्क्स देखे हैं जो रातों को आजकल आबाद हो रहे हैं और बच्चों के साथ आबाद हो रहे हैं. जिन्हों पहली मरतबा ऐसी समझ आ रही हैं जहां लोग इवन पाकिस्तान टूर्स पे या किसी दूसरे शहर में भी नहीं जा पा रहे. बड़ा सिंपल बात है, रीजन ये पैसे नहीं है. आज तो एक मेहमान भी मेरे पास आ गए हैं, असगर, जिनसे मेरी बात होती है अक्सर. तो वो आज स्टूडियोज के अंदर आ गए, आई थिंक नीचे आ गए. तो आई थिंक इज कमिंग अप, लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन. बातचीत हो जाएगी उनसे. एंड देन वो सी, इनके ये डायरेक्टर थे, इन्होंने पाकिस्तान में आई थिंक 3-4 फिल्में जो हैं वो डायरेक्ट की हैं, लेकिन इन दिनों जो काम नहीं है. नॉट इन द सेंस के फिल्म में काम नहीं है, जस्ट वैसे ही आई थिंक ही हैज डिसाइडेड टू टेक यू नो टेक लीव. तो अभी देखते हैं, इनसे बात करेंगे एंड देन वो फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या है. वो टॉक अबाउट अ लॉट. आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सो यू स्टे पुट, डोंट गो अवे, कहीं भी मत जाइएगा. चीयर्स. चाय है भाई, चाय है. चीयर्स का मतलब हमेशा वो नहीं होता, तो चाय है. आई एम रेजिंग माई कप, मैं अपने कप को रेज कर रहा हूँ. आपने सिर्फ इतना करना है कि अगर आप खाना खा चुके हैं तो इट्स गुड, व्हिच आई थिंक कि आपने खाया नहीं होगा, बिकॉज 8-8:30 बजे कोई भी नहीं खाता पाकिस्तान में, बहुत मुश्किल होता है. तो अगर आपने नहीं खाया है तो आप इत्मीनान से चाय पीजिए. जब शो खत्म हो जाए तब खा लीजिएगा, या शो के बीच में खा लीजिए, यू नो. बट शो जरूर सुनिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पाकिस्तान दैट्स हैपनिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान. तो उन चीज़ों के बारे में बात होगी, लेकिन सबसे ज्यादा बात होगी आपके बारे में. आप लोग ठीक हैं? As long as you guys are okay, I'm okay. I'm a bit down today because of my health. तकलीफ है, दर्द है, तो उसकी वजह से आई थिंक आई एम फीलिंग अ बिट लो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली चाय मिल गई है ना, अब ठीक हो जाएगा सब, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन. अच्छा मेरे पास को बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं सिवाय इसके कि चीजें ठीक ही हो जाए, क्या करें, नहीं हो सकता ना, मतलब मुझे तो चीजों को ठीक करना ही है, हर सूरत के अंदर चीजों को ठीक होना है. आई डोंट थिंक यू नो कोई ऑप्शन ऐसी है मेरे पास जिससे यू नो दैट्स द ओनली थिंग आई हैव. आई थिंक एवरीथिंग हैज टू जस्ट गेट ओके, एब्सोल्युटली ओके. आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ सॉन्ग जो मुझे लगता है कि मुझे चलाना चाहिए और इस वक्त चलाना चाहिए. एक मिनट. I'm trying. Yeah, I can go with this. I want to go with this. Really? थोड़ा सा हिप तो सॉन्ग हो ना, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं. Here we go. You're gonna like it. Reason is, because I'm telling you. So ladies and gentlemen, let's get ready. Let's see if we can do this. You know this. It is Shakira. All right, जी, once again, welcome back. और मेरे साथ इस तस्कर भाई हैं और मैंने आपसे जिक्र किया था कि वो आज आ गए हैं, तो आप let's say hello to him. Assalamualaikum.
वालेकुम अस्सलाम.
आपको माइक में थोड़ा बोलना पड़ेगा, माइक में थोड़ा बोलिए.
वालेकुम अस्सलाम.
कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं?
अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, करम अल्लाह का.
इट्स गुड टू सी यू. अच्छी बात है, बहुत बहुत खुशी हो रही है देख के आपको. अच्छा सर, सर मुझे ये बताइए ना, थोड़ा शुरू करते हैं ना, बात करते हैं. अज़हर भाई को आप सब जानते हैं, इन्होंने फिल्म जो है वो डायरेक्ट की है, पश्तो फिल्म भी डायरेक्ट की है, उर्दू फिल्म जो है वो भी डायरेक्ट की है, एंड सिंधी भी. सिंधी कितनी फिल्में डायरेक्ट की आपने?
मैंने पांच.
पांच फिल्म्स,
पांच मेरी रिलीज है, दो जो है वो बदकिस्मती से बन नहीं सकी.
बन नहीं सके?
एक तो मेरी पर्सनल थी, वो हीरो मेरा जो है ना वो लंदन गया कराटे लड़ने, वहीं स्लिप हो गया.
वो कौन था?
उमर नाम था, उमर खान.
ओके, तो वो आपने आपने उसको हीरो लिया था, तो फिर उसके बाद
वो नहीं. मैंने काफी काम किया हुआ था, वो फिर वो गया, फिर हुआ, फिर कुछ चार पाँच साल बाद आया, तो मैंने कहा भाई अब तो टाइम चला गया.
ओके,
बस वो रुक गए फिर.
अच्छा तो शुरू कैसे किया था आपने फिल्मों में?
यार 1962 या 1963 में एक फिल्म मैंने देखी थी, चंदा.
चंदा, ओके.
रहमान शबनम,
रहमान साहब जी,
और मेरा मेरा वो आइडियल था, मेरा पसंदीदा एक्टर
रहमान साहब.
रहमान,
ओके.
और अच्छा मुझे फिर ये शर्फ भी हासिल है, मेरी उनके साथ फिर बाद में काफी मीटिंग भी रही.
अच्छा.
हाँ, और मैंने शबनम बेगम की पहली फिल्म देखी थी, और मैंने पहली उर्दू फिल्म जो है वो शबनम बेगम के साथ ही की.
माशाल्लाह माशाल्लाह. वो कौन सी फिल्म थी?
मस्ती खान.
मस्ती खान, जिसमें शबनम भी थी.
नशियात पे फिल्म बनाई थी मैंने वो.
ओके.
और वो उस वक्त ये हेरोइन नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी, तो हमारा एक दोस्त था, उसका बेटा जो है ना वो खुद बनाता था हेरोइन, उसका बेटा ये हेरोइन के ही चक्कर में उसकी डेथ हो गई, तो वो पागल हो गया.
अल्लाह अकबर.
तो वो मेरे जहन में वो मैसेज था, उस मैसेज को लेके मैंने ये कहानी लिखी.
मस्ती खान की खुद ही लिखी थी? खुद ही लिखी थी,
खुद मेरी खुद.
कितने फिल्म बन जाती थी उस जमाने में?
ये मैंने 44 लाख में बनाई,
44 लाख. और ये कितने साल पहले की बात है?
ये 86 की वो है, और 87 की रिलीज.
87 की रिलीज है, तो और कितने दिन में बनाई थी फिल्म?
ये तकरीबन 8 से 9 महीने लग गए.
8 से 9 महीने लगे थे. एडिट यही किया था?
एडिट तो कराची में हुई थी.
कराची में
एडिट हुई थी. बाकी म्यूजिक वगैरह उसका लाहौर में किया था. कुछ शूटिंग कराची में की थी
और
कुछ लाहौर में की थी, कुछ जाके मानसेरा वगैरह में की.
अच्छा, और जो कलर ग्रेडिंग वगैरह थी वो किधर की थी?
वो अपना इंटरनेशनल स्टूडियो.
इंटरनेशनल स्टूडियो, ओके ओके. अच्छा तो मुझे बताएं कि पैसे कवर कर लिए थे?
हाँ, पैसे कवर हो गए.
पैसे कवर हो गए.
असल में मेरा जो फाइनेंसर थे ना वो थे असलम नाथा.
असलम साहब, ओके.
असलम नासा से, वो बहुत ही नफीस आदमी थे, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत.
आमीन आमीन आमीन.
और बहुत मेहरबान, यानी एक बात पे, मतलब बात ऐसी थी कि मैंने 2-3 फिल्मों का इफ्तिताह उनसे करवाया था. तो एक दिन मेरे पास आके बैठ गए, यार असगर भाई क्या, मैंने एक फिल्म थी मेरी सिंधी तूफान के नाम से, बहुत अच्छा म्यूजिक था उसका, तो मैंने उनको गाने दिखाए. मुझे कहने लगे यार ये क्या बात है, क्यों नहीं लगा रहे? मैंने कहा यार पैसे नहीं. कहते कितने पैसे लगे? मैंने कहा 3-4 लाख रुपए चाहिए. मुझे कहने लगे यार ले जाओ आके शाम को. रियल मैं आपको वो बात कर रहा हूँ जो प्रिंटेड है.
अच्छा, और फिर उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद मुझसे फिर एक बंदे की फिल्म मैंने ओपनिंग उनसे करवाई.
नहीं नहीं, एक मिनट. हाँ. पीछे जाते हैं ना, तूफान आपने लगाई, फिर
तूफान अभी रिलीज नहीं की थी. अच्छा. सिर्फ उन्होंने मुझे उसके पैसे दे दिए थे.
ओके.
तो शाम को मुझे घर. अच्छा नहीं, वो मैं उसी लिंक में आ रहा हूँ ना.
अच्छा,
हुआ ये कि मुझे उन्होंने एक शख्स था उसकी फिल्म की ओपनिंग मैंने उनसे करवाई थी, तो मुझसे उसने पूछा यार जमुरद खान क्या कर रहे हैं, मैंने कहा उसने उर्दू फिल्म शुरू की हुई है।
ओके,
तो कहते कौन, मैंने कहा किसी और डायरेक्टर को लिया है। मुझे कहने लगा तुम क्यों नहीं, तुमसे क्यों नहीं बनवा रहा, मैंने कहा यार वो मुझे कह रहा था हीरो मुझे ले लो, तो मैंने कहा यार ड्रैकुला नहीं बना रहा तो हंसने लग गया। उसने बोला कितने पैसे लगते, मैंने यही 40-45 लाख रुपया, कहता तुम आओ यार उर्दू फिल्म शुरू करो। घर चला गया मैं उसके, पहले तो उसने वो 3 लाख रुपए मुझे दिए, फिर 5 लाख रुपए इसने मुझे और दिए। उस जमाने में बड़े नोट नहीं थे,
छोटे नोट थे, 100 रुपए का नोट था,
100 रुपए, 50 रुपए, तो वो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, बस मैंने फिर फिल्म शुरू कर दी अल्लाह का नाम लेके।
अच्छा तूफान का क्या हुआ, रिलीज हुई?
तूफान रिलीज हो गई।
और फिर कैसा बिजनेस था?
अब तो सही था, सिंधी फिल्मों का तो मतलब एक मीडियम किस्म का ही बिजनेस होता है, लेकिन ठीक थी वो फिल्म, बहुत ही क्लासिक फिल्म थी।
किस चीज पे थे
वो? तो एक आम रूटीन फिल्म थी, लेकिन उसमें ये था उसका जो मरकज ख्याल था ना, वो जैसे रुस्तम सोराब वाली बात थी उसमें।
अच्छा, और लव स्टोरी थी?
मीडियम सी लव स्टोरी,
एक्शन प्लस। अच्छा, हमारे यहाँ अच्छा एक्शन नहीं होता था, अब तो बेहतर होने लगा, लेकिन पहले नहीं होता था।
अगर एक्शन देखना तो मेरी एक फिल्म है जला जोंदे।
कौन सा?
जला जोंदे, मैं जिंदा हूँ। उसमें एक्शन देखें आप, इंशाल्लाह आपको इंग्लिश फिल्म नजर आए।
सर बदर मुनीर जो थे वो कैसे थे
यार? वो पता क्या है, वो एक मलंग आदमी थे।
ओके,
और ऐसे वैसे नहीं, कोई उसको दुनिया की फिक्र ही नहीं थी, ना पैसे की फिक्र, ना किसी और चीज की फिक्र। जिसका जो उसके पास चला गया वो खाली वापस नहीं गया। अगर उसके आप बदर साहब की तलाशी ले लें, उसकी जेब में आपको 10 रुपए नहीं मिलते।
वाकई में
मैंने उनके साथ बहुत काम किया, मैंने उनकी प्रोडक्शन भी की, उनके लिए फिल्म भी। एक टाइम ऐसा था बदर साहब के पास बहुत बहुत फिल्में थी, टाइम नहीं था, तो मैं उनसे कहता था कि यार बदर साहब ये जो आपके इर्द गिर्द लोग लगे हुए हैं ना, तो इनसे बचो, सिलेक्टेड फिल्में साइन करो, क्यों ऐसी भरमार कर रहे हो? मुझे कहना यार वक्त घड़ी घड़ी नहीं आता, बस वक्त आया। फिर पश्तो फिल्में उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी। उर्दू एक टाइम हुआ वो उर्दू में, आपको पता है ना पाकिस्तान में उर्दू जवाल तो है। तो उन्होंने एक दिन, मैं शानूर स्टूडियो जा रहा था, ये बाहर निकल रहे, तो मुझे कहने लगे यार आओ, बस मेरा हाथ पकड़ो और अपने ऑफिस ले। कहते ये ऑफिस है यार, अब फिल्म, अब तुमने जो कुछ करना है तुमने करना है। मैंने कहा बदर साहब अब खाली जेब में क्या करूंगा? कुछ मुझे उन्होंने बताया कि यार फलां फलां के बस मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैंने जाके कोशिश की, उन्होंने दे दिए। Okay. बस अल्लाह का मुझ पे एक करम है, मैं किसी के पास जाता हूँ तो वो
दे देता है कुछ,
बस वो मान जाता है, बस ये okay. भी अल्लाह का करम है।
okay.
तो मैं जब गया तो खैर वो मुझे कहने लगा तुम डायरेक्शन करो। मैंने कहा बदर साहब आप इस रिस्क में अभी नहीं है। तो उनका जो पुराना डायरेक्टर था ना, एक पश्तो फिल्म उन्होंने दो पश्तो फिल्में बनाई थी, जैकान और कोशवान, वो सुपर हिट फिल्में थी।
okay.
मैंने कहा उनको बुलवाते हैं, उनसे वो फिल्म बनवा लेते हैं, ताकि आप स्टेबल हो जाएंगे तो फिर फिल्में मैं 10 बना लूंगा, कोई मसला नहीं मेरे लिए।
okay.
तो मुझे कहने लगे यार लोग तो डायरेक्शन के पीछे मरते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं दोस्त के पीछे मरता हूँ। खैर वो फिल्म हमने शुरू करा दी बदनाम के नाम से। निम्मी को लिया उसमें। अच्छा तो वो फिर फिल्म अच्छा सुपर हिट हो गई वो भी। फिर बदर साहब ने फिर पश्तो फिल्मों पे आ गए, फिर मैंने बहुत सारी फिल्में उनकी साइन करवाई, उनको बहुत सारा उनके साथ काम किया, यहाँ तक फिर कराची में हमने बड़े शो भी किए। 81 में हमने यहाँ सबसे बड़ा शो किया, 24 शो किए आर्ट काउंसिल में पश्तों के। हाँ 24 शो किए। ये उस वक्त की बात है जब शाह फैसल साहब का जो मर्डर हुआ था ना, उस दिन मेरा शो था।
वे वे।
तो बड़ा मतलब काफी बड़ा बड़ी मुश्किल से उस मंजिल तक पहुंचे। घर से तो निकले थे हीरो बनने, जो कि मुमकिन नहीं हुआ। वो भी एक मेहरबान से हमारी प्रोडक्शन में, वो मुझे कह रहे थे यार असगर भाई तुम्हारा जो जेन है ना वो है कमांड की तरफ।
okay.
तो तुम किसी की कमांड में नहीं रहोगे, तुम अपनी कमांड बनाओ, तुम डायरेक्शन शुरू कर दो। फिर मैंने वहाँ पे एक बहुत बड़े आदमी के बेटे थे लियाकत अतरे साहब।
okay.
और कवि साहब और साकी साहब ने एक फिल्म शुरू की हुई थी माँ जबीन के नाम से।
ओके
तो वो मैं उसमें उस प्रोडक्शन में चला गया। तो लियाकत साहब करते करते एक टाइम ऐसा हुआ कि बहुत अलग, उस जमाने में बड़े अच्छे उनके पास राइटर भी थे, सलीम चिश्ती साहब राइटर थे उनके, सीमी फिल्म्स के नाम से वो फिल्म थी। खैर वो उसके बाद इतना मैंने उसमें सीख लिया कि मैं फिर एक नया नया काम था पश्तो फिल्मों का.
अच्छा, ये जो पांच फिल्में आपने की
जी,
इनमें से सुपर हिट कौन सी थी?
इसमें मेरी जिला जोंदे.
जिला जोंदे वो सुपर हिट थी.
सुपर हिट फिल्म.
और मस्ती खान कैसा बिजनेस था?
मस्ती खान मीडियम था, क्योंकि वो मैंने ईद पे रिलीज की थी, तो बहुत सारी फिल्में थी आगे पीछे, लेकिन ईद पे ये मुझे क्रेडिट है.
अच्छा, आपके जमाने का सबसे जो टॉप मोस्ट हीरो रहा है वो कौन रहा?
उर्दू जमाने में टॉप जो थे वो नदीम साहब थे,
नदीम साहब
थे,
वहीद साहब थे,
अली साहब थे.
कभी मुलाकात हुई है नदीम साहब से? तो मुलाकात हुई.
नदीम साहब तो मेरी बहुत, अल्लाह ताला उनको खुश रखे,
आमीन आमीन.
मेरी मेरी मेरे से वो बड़ी मोहब्बत करते थे,
आमीन.
यानी एक फिल्म थी खुश नसीब.
हाँ, खुश नसीब
उसमें थे ये. तो वो मैं उस प्रोडक्शन में था मैं. तो वो क्या होता था, 12 बजे 1 बजे शूटिंग शुरू होती थी
दोपहर में.
दोपहर में तो मैंने एक दिन बात हुई तो मुझे कहने लगे, मैंने कहा भाई यार 2-3 घंटे का काम होता है, आप लोग यार देर से करते हो. तो कहने लगे जी नदीम साहब नहीं आते. मैंने कहा चलो नदीम साहब सुबह 9 बजे आएंगे, आप शुरू करो. मैं नदीम साहब को मैंने कहा, उसने बोला तुम मेरे पास होटल आ जाओ, मैं आपके साथ. आ गए वो 9 बजे, यहाँ 11 बजे तक ना डायरेक्टर का पता था ना प्रोड्यूसर का पता. वो लेके ना मुझे गाड़ी में घूमते रहे, मुझे कहने लगे देख मैंने तुमसे कहा था ना. मैंने कहा यार बस मैंने ये बात साबित करनी थी कि नदीम साहब डिफॉल्टर नहीं है. डिफॉल्टर
आप लोग. मैंने तो नदीम साहब के साथ एक सीरियल किया था और हमेशा सर हमेशा टाइम पे. और सबसे बड़ी बात ये सर की कि उनको डायलॉग्स बहुत याद होते हैं, बहुत ज्यादा.
असल में एक कुछ लोग होते हैं पैदाइशी एक्टर, जैसे सुल्तान राय साहब, बदर साहब, अली साहब, वही साहब, ये वो एक्टर हैं कि जिनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, इनसे सीखा जा सकता है.
अच्छा, ये बताइए ऐसे पूछ रहा हूँ, उस जमाने में जो फिल्म्स का ग्लैमर था वो बहुत ज्यादा था,
बेपना में जब 150-200 फिल्में बनती थी तो ग्लैमर था.
ओ या बिल्कुल बिल्कुल,
50-60 फिल्में पश्तो बनती थी, 100 के करीब पंजाबी बनती थी,
60-70
फिल्में उर्दू की बनती थी.
अच्छा, इतनी बनती थी.
ऐसी पोजीशन थी कि फ्लोर राय साहब को अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, वो ट्रेडी शिफ्टों में काम करते थे, सुबह 8 से 10, 10 से 12, फिर पूरी शिफ्ट करते थे. तो इतना काम था उस जमाने में.
इस जमाने
कोई आदमी भूखा नहीं होता था.
और अब जाहिर है अब तो बिल्कुल काम
अब
नहीं
तो
है.
काम खत्म हो गया. काम हमने खत्म किया.
कैसे खत्म किया?
हमने इसलिए खत्म किया कि हम वो एक भेड़ चाल चल पड़े, फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई
और लोगों ने आना छोड़ दिया.
फिर जो दूसरी जो सबसे बड़ा जो मुश्किल हुआ वो हुआ सिनेमा खत्म हो गया. जब सिनेमा खत्म हुए तो मामला,
वो सिंगल सिनेमा जो था वो हीरो बनाता था, स्टार बनाता था.
ऑलराइट
जी, एक जना आई वांट टू प्ले दिस सॉन्ग और उसके बाद हम बात करते हैं. इट्स बाय लेडी गागा. मैं असगर साहब से बात कर रहा हूँ, बट लिसन टू दिस एंड देन ऑफ कोर्स वी आर गोना टॉक. मतलब मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं पुरानी कुछ बातें पूछूं, तो पुरानी बातें से मैं डेफिनेटली पूछूंगा. बट राइट नाउ लेट्स टेक दिस एंड देन फिर महंगाई शंगाई के बारे में बात होगी. बट राइट नाउ लिसन टू दिस, आई थिंक यू आर गोना लाइक इट. हियर वी गो. इट इज रियली कूल एक्चुअली, लिसन टू इट. जाना नहीं आपने कहीं. लेडीज एंड जेंटलमैन, सी द थिंग इज, मैंने हमेशा कहा है कि आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ असगर भाई से, और इन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं. 5 फिल्में तो डायरेक्ट की हैं, बाकी बहुत सारी प्रोडक्शंस के अंदर ये हिस्सा रहे हैं. उरूज जवाल की कहानी है ये. हमारी इंडस्ट्री जो कराची से शुरू हुई थी लाहौर तक पहुँची थी और इसके बाद फिर वो इवेपोरेट हो गई, अब दोबारा से खड़ा होना शुरू हुई है. लेकिन अब नेटफ्लिक्स आ गया तो आई थिंक हमको मुकाबला अगर करना है तो फिर हमको नई चीज़ों पर जाना पड़ेगा. फिल्म जब भी कोई बनाता है तो बहुत खुशी से बनाता है, और एक बुरी फिल्म बनाने में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी एक अच्छी फिल्म बनाने में लगती है. ट्रस्ट मी, इसमें कोई दो राय नहीं है. और कोई शख्स भी फिल्म इसलिए नहीं बनाता बिकॉज वो फ्लॉप हो जाएगी. हर शख्स को अपनी कहानी पर बिलीव होता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. और आजकल तो कॉम्पिटिशन इतना है कि अगर आप कोई ऐसी फिल्म करना चाहते हैं जो बिजनेस अच्छा करे तो फिर आपको बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग टू असगर एंड लेट्स सी व्हाट क्या कहते हैं ये. सर, तो हम बात कर रहे हैं, जनो इंडस्ट्री ने बहुत उरूज देखा, बहुत उरूज देखा.
और इसमें कोई शक नहीं है.
अच्छा, मैं भी आपकी फिल्म के कुछ रशेस देख रहा था, मस्ती खान की. लुक प्रीटी गुड एक्चुअली, डिडंट लुक बैड. जो टेक्नोलॉजी उस वक्त थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 1986 राइट, 86 में. तो 86 में जो टेक्नोलॉजी थी, कलर्स आर रियली गुड. मैं आपको सच बता रहा हूँ, कलर्स आर रियली 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 नाइस. आपने कलर ग्रेडिंग कहाँ करवाई थी? इंटरनेशनल स्टूडियो,
इंटरनेशनल से करवाई थी. तो असल में इसमें दूसरी बात है ना, इसमें कैमरामैन का कमाल
होता, बड़ा कमाल होता है, लाइट का बड़ा कमाल होता है.
लाइट, और असल में तो अब तो लाइट वाइट नहीं है ना, अब तो कुदरती लाइट है ना. पहले तो लाइट की जाती थी, दो दो दिन लग जाते थे सेट पे लाइट करने में, और ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में असल में तो लाइटिंग की जाती थी ब्लैक एंड व्हाइट में। नबी साहब को मैंने देखा। अच्छा, मैं जब लाइटिंग वाइटिंग वो कराते थे ना, तो मैं जाके ऐसी सेट पे खड़ा होता।
अच्छा, तो बचपन से आपको शौक था?
अब ये बस आप ये अंदाजा लगा ले कि
मैं आपको बता रहा हूँ, बचपन से,
बचपन से ही ना,
बचपन से ही शौक था,
बचपन से बस इस शौक।
अच्छा अच्छा, आजकल क्या करते हैं आप?
इस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं करता।
कुछ भी नहीं करते, घर पे होते हैं, एंजॉय करते हैं?
बस घर में होता हूँ, एक पोता है मेरा।
अरे वाह, माशाल्लाह।
बस वो बस ठीक है।
ओके
सही है।
ओके, नहीं मतलब लाइफ तो गुजर रही है ना।
हाँ, ओके, लाइफ तो लाइफ तो फुटपाथ पे सोने वालों की भी गुजर जाती है।
अच्छा, तो ये बताएं मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं सर आप?
सबसे सबसे मुश्किल काम और सबसे आसान काम।
मुश्किल कैसे और आसान कैसे?
आसान ऐसे कि आप धोखा दें तो 10 मोहब्बतें कर लें, और आप धोखा खाएं तो एक मोहब्बत नहीं खा सकते।
अच्छा,
तो मोहब्बत जो है ना, वैसे लेकिन मोहब्बत तो है ना, आदमी जब पैदा होता है तो अपनी माँ से मोहब्बत करता है, अपने बाप से करता है।
अबे यार असगर भाई, माफ कर दे मुझे, मैं इन इस किस्म की मोहब्बतों की बात नहीं कर रहा, ये तो बाय डिफॉल्ट होती है, ये तो होती है ना, ये तो आपके अंदर होती है।
बस मैं जब देखे मेरी बात, अगर मोहब्बत नहीं है ना,
हाँ, तो कुछ नहीं है।
तो
अच्छा आप बताइए, सच्ची बताइए, कितनी बार मोहब्बत की, कितनी बार दिल दिया आपने?
यार दो तीन चांस तो ऐसे, दो तीन चांस तो है।
अच्छा, भाभी के अलावा?
हाँ,
भाभी के अलावा। हाँ, शादी
भाभी, भाभी भी जो है ना, वो भी वो मोहब्बत आप उसको कैसे से अचानक मोहब्बत,
अचानक मोहब्बत क्या
एक
मतलब?
दिन, एक दो दिन में शादी,
वो तो आपने बताया था। हाँ, रक्षा में बैठ के आपने बोल दिया था,
ऐसा ही है।
और आज तक उनके साथ हैं आप?
नहीं, उनकी डेथ होगी,
उनकी डेथ होगी कब?
2013 में उनकी डेथ होगी। I'm
so sorry to hear that. कितने साल शादी रही?
39 साल
शादी।
और क्या वो असल में क्रिश्चियन फैमिली से थी?
ओके,
फिर उनको मैंने थानवी के यहाँ से इस्लाम कबूल करवाया। और फिर क्या क्या मुसलमान औरत क्या आपका साथ देगी जो उसने दिया?
वो भी मुसलमान ही थी ना?
मुसलमान हो गई ना।
हाँ, हाँ।
नहीं, मिसाल बेसिक की बात कर रहा हूँ ना।
ओके,
वो मेरे सारे बच्चे कुरान पढ़े हुए हैं, मेरी सब मतलब है उस खातून की वजह से।
क्या बात है।
तो बात यह है कि बस जिंदगी तल्ख भी है और आसान भी है, अगर आप उसको तल्ख बना लें। दूसरों से नफरत करोगे तो तल्ख हो जाएगी, मोहब्बत करोगे तो।
अच्छा, वो जो दूसरी मोहब्बतें थी वो कब कब हुई?
हाँ, एक तो बहुत पहले थी,
बहुत पहले
वो उस वक्त कोई 15-16 साल मेरी उम्र थी।
ओके, सभी की होती है।
हाँ, वो उस जमाने में थी, खून के खत मुझे आते थे।
खून के खत आपको आते थे?
मुझे आते थे। तो वो भी
मुश्किल कर रहे हैं आप,
खातून
आप बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल कर रहे हैं आगे। हाँ। अच्छा, आपने भी कभी खून के खत लिखे?
नहीं नहीं, मुझ में खून इतना सार
अच्छा ओके,
मुझमें इतना खून नहीं था। खातून अभी इस वक्त अमेरिका में वेल सेट है।
ओके, उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद लाहौर में भी एक लड़की मुझे वैसे ही पसंद आ गई।
ओके,
नई कराची वहां से पेशावर से आई हुई थी।
ओके,
उसको भी मैंने रास्ते में दो तीन दफा बातचीत हुई शूटिंग के दौरान ही, वो कवि साहब की जो फिल्म थी ना उसी के दौरान।
ओके, महजबीन
उसी के दौरान मैं उसको सेट से लेके आ रहा था, और रास्ते में मैंने उसको बोल दिया
क्या
कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। वो हंस पड़ी, फिर काफी टाइम अच्छा गुजरा। अच्छा, वो टाइम ऐसा गुजरा कि मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे।
ओके,
तो फिर मैंने बड़ा टाइम वाइम ऐसे करके एक कई मेरे थोड़े से इख्तलाफात हो गए, मैं कराची आ गया। कराची भी ऐसे आ गया कि एक मेरे बड़े मेहरबान है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, पेशावर में उनके सैनमा आफ्ताब अहमद साबरी।
ओके,
उनका फिरदौस सैनमा था, अपना साबरीना आईना बहुत, और वो मुझे अपने बेटों की तरह वो करते थे। तो हम कराची आए, कराची में यहाँ वो यास्मीन खान हमारी एक हीरोइन होती थी
की,
वो साथ आ गई। उसमें थोड़ी सी मेरी उससे तल्ख कलामी हो गई।
ओके,
वो क्योंकि वो सारे मामला मुझ पे भरोसा करते थे।
ओके,
तो इसमें थोड़ी बातें आगे पीछे हो गई, तो मैं चला गया।
ओके,
मैं चला गया, मेरे यहाँ बेनोई होते थे अख्तर कॉलोनी में ना।
ओके,
मैं उनके घर चला गया। दो तीन दिन के बाद आया तो ये फिर ये अगला किस्सा जो आपको मैंने सुना दिया था,
ये हो गया था।
हाँ, ये हो गया, शादी हो गई।
सुभान अल्लाह। उसके बाद
फिर बहुत बाद में
एक मोहब्बत हुई, और
वो हुई, और वो मोहब्बत मुझे सबसे महंगी पड़ी।
क्यों, क्या मतलब?
कभी कभी महंगी पड़ जाती है, वो बड़ी तल्ख मोहब्बत थी,
तल्ख मोहब्बत,
तल्ख जिसको नहीं कहते हैं तल्ख,
ऐसे मैं एक ब्रेक
लेता हूं, आप शायद इस फिल्म में वो लड़की आपको नजर आएगी।
किस फिल्म में?
इसी मस्ती खान में।
अच्छा, इसमें मुझसे मोहब्बत हो गई,
कुरैशी की बहन बनी हुई, है।
ओके, तो उनसे मोहब्बत हो गई थी आपको?
वो फिर उसमें मेरी असलम से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बहुत मेरा मुझसे बड़ा प्यार भी करता, मेरी बीवी को उसने बहन बनाया हुआ था।
Okay.
तो एक दिन दावत पे हम चले गए उसके घर पे, तो उस दावत के दौरान उसका बेटा था आमिर, तो कहने लगा बेगम मेरी एक बच्ची थी उस वक्त, तो और एक बच्ची बेटा भी था, तो कहने लगा पापा ये कौन है, मेरी बेगम की तरफ इशारा करके ना, तो उन्होंने कहा जी ये असगर भाई की वाइफ है। कैसा उस दिन जो लड़की आई थी आप कहते वो भी वाइफ है। वो केस खराब हो गया।
अच्छा, केस खराब हो गया।
केस खराब हो गया भाई, वो असल मेरी
एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से बात करेंगे। केस खराब हो गया, केस क्यों खराब हो गया, we'll talk about that. But ladies and gentlemen, right now let's do this. Ladies and gentlemen, once again, welcome back, and we are with Asghar bhai, and we're talking about ki kya hai kya nahi hai. But let's forget about love and all, jo hum jiske bare mein baat kar rahe the. Let's talk about Pakistan. Sir, aapne bahut sara daur guzara, टाइम गुजारा, दिस इज कैसा लग, कैसा रहा इस मर्तबा आपको, ये जो पिछले पांच साल साढ़े पांच साल गुजरे हैं कैसे गुजरे?
ये पांच साढ़े पांच साल बहुत ही मुश्किल बहुत ही मुश्किल।
अच्छा, एक बात बताएं, आपको लगता है पाकिस्तान में कभी महंगाई कम होगी?
ये मजाक है,
ये मजाक है। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ।
ये मजाक, कभी देखिए मेरी बात सुने, आज तक कभी सुना है आपने कि एक चीज का रेट बढ़ने के बाद कभी कम हुआ?
अच्छा, अब जो मैं सवालात करूंगा ना, मैं खुल के आपने, अब आप एक आम आदमी के तौर पे बात करेंगे सर,
सही है,
ठीक है, तो खुल के आपने जवाब देना मुझे, लेकिन हमने इखलाक के दायरे में बात करनी है, पॉलिटिशियन किसी है, बस ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, हियर इज माय क्वेश्चन, मुझे ये बताइए, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, क्या इन्हें आम आदमी से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता है? एक सवाल, एक सवाल, फिर इसका दूसरा हिस्सा भी है, अगर वास्ता और ताल्लुक नहीं है तो एक आम आदमी इनके जलसों में नारे लगाने क्यों पहुंच जाता?
असल में अब थोड़ा सा फर्क पड़ गया, क्योंकि मासूम लोग थे, बत्ती के पीछे लग जाते थे। बेसिकली पॉलिटिशियन जो है, आप शुरू से चले आए, पहला नारा लगा रोटी कपड़ा और मकान, कहीं नहीं मिला। दूसरा नारा लगा कर्ज उतारो मुल्क संवारो, नहीं उतरा। तीसरा नारा लगा रियासत मदीना, नहीं बनी।
वो तो खैर,
बात सिर्फ ये है, पॉलिटिशियन सिर्फ अपने इमरान खान में और बाकियों में ये फर्क है कि उसने अपने लिए कोई खास कुछ नहीं बनाया, इन्होंने तो जायदादें बनाई, दूसरों ने
अभी कुछ ना कहें। नो, ये बात मुश्किल की बात नहीं है। देखें, अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी एलिगेशंस हैं। आप किसी को पसंद
सामने कर... मैं तो हम तो सामने की बात कर रहे हैं, सामने नहीं नजर आ रहा।
देखें, सामने तो उनका भी नहीं है ना, वो भी सब आजाद हो चुके हैं, वो भी सब तो
चले,
अभी छोड़
दें, इनको जाने दें।
इसकी बात ये नहीं है, बात ये कि मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग बैठ के मसाइल को हल कर सकते थे।
आज सुबह की
दोनों ने अपनी अनाओं की वजह से नहीं किया, और इसका जो असर पड़ा वो पाकिस्तान पर पड़ा
बहुत बुरी तरह। आज सुबह की बात है, एक और चैनल है, वो भी आपके क्लोज का है, तो सुबह मेरी वहां पे बात हुई थी इसी बात पे, ये बात जो आपने सवाल किया है, इसी पे मैंने बात की थी याह्या हुसैनी से। मैंने कहा यार बात सुने, हम सुबह उठते हैं तो एक दूसरे की बुराई में लग जाते हैं, और बुराई भी ऐसे बोतान और चुगलखोरी जो भी है, ये हम लग जाते हैं। अगर ये वक्त हम अपने मुल्क के लिए और अपनी अवाम के लिए गुजारें, तो मेरा ख्याल है कुछ बेहतरी हो सकती है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। खत्म कर देना चाहिए, अभी छोड़ दें। असल बात यह है कि आ जाएं इस मुल्क की तरफ, खुदा के वास्ते इसको संभालना बहुत जरूरी है।
नहीं, लेकिन खबर नहीं बनती ना, आप समझें बात को। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है असगर भाई, ये तो सब हम ख्यालों की दुनिया से निकलना चाहिए हमको।
हाँ,
देखें, बहुत रियलिस्टिकली मैं बता रहा हूँ, नहीं बनती खबर, मतलब पिछले साढ़े पांच साल जो गुजरे हैं, मतलब वो आप लोगों को नजर नहीं आते, आप किसी के भी साथ हो, डजंट एनी मैटर, आप खान साहब को सपोर्ट करते हैं प्लीज करें,
नहीं ना तो कुछ नहीं,
आप एक सेकंड, आप शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं, उनको बिल्कुल करें। हियर इज माय क्वेश्चन,
बात ये है,
आज इस वक्त महंगाई का हाल क्या है, आज इस वक्त डॉलर किस जगह है? आज मैं आपको बताता हूं, आज मुझे किसी को कुछ पैसे भिजवाने थे और वो डॉलर की शक्ल में भिजवाने थे, पाकिस्तान में ही उन्हें जरूरत थी, वो ट्रैवल कर रहे थे, मुझसे उन्होंने कहा कि साहिब भाई अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज कर दें। ये हालत हो गई है,
बिल्कुल बिल्कुल।
आपको अंदाजा है वो सफेद पोश लोग जो किसी जमाने में किसी से कुछ नहीं कहते थे, वो आज रोड पे, वो सफेद पोश लोग जो बड़ी मुश्किल से अपनी चादर को बचा के बैठे थे, आज वो बेयारो मददगार हैं। आज आप बिजली का बिल देने जाएं, आपकी सीटियां निकल जाती हैं। आज आप बाजार से खरीदने जाएं कुछ भी, तो आपको लग पता जाता है कि कितने का और सबसे बड़ी बात यह, मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई, सारे टैक्सेस, सारी बकवास सिर्फ गरीबों के लिए। हमारे मुल्क का अमीर जो है और हमारी जो अशराफिया है, ये उठा के सारे इल्जामात लगा देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने ये किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने ये किया, एस्टैब्लिशमेंट ने ये किया है। आई एम रियली सॉरी, बट आपने कब किसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया है? आपको एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत है? अगर आप आज एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाते हैं तो डू यू रियली थिंक कि कोई भी आपकी कोई जमात हो, क्या वो रिजल्ट को मानेगी? अभी क्या हो रहा है कराची के अंदर, आप मुझे बताइए। जमात इस्लामी का अपना स्टांस है, पीपल्स पार्टी का अपना स्टांस है, एक टग ऑफ वॉर है जो जारी है। मुल्क नहीं बढ़ता आगे तो ना बढ़े, इनको कोई फुर्सत नहीं है किसी भी चीज से। और रात को सब के सब एक होते हैं, आप इनका रहन सहन देख लें, आप इनकी गाड़ियां देख लें, आप इनके प्रोटोकॉल्स देख लें। आपने दुनिया में कहीं देखा है एमपीएस को गाड़ियां मिली हुई हैं, एमएनएस को गाड़ियां मिली हुई हैं, उनके अलाउंसेस चल रहे हैं? दुनिया में कहीं देखा है? जहां जाके पता करें अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर, आपको पता चल जाएगा। खान साहब तो कहते हैं मुझसे ज्यादा यूके को कोई जानता नहीं, मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई जानता नहीं। वेस्ट में कभी हमारा हाथ मिलती है? शहबाज शरीफ साहब नहीं जाते, हर जगह जाते हैं वो, मुझे बताइए किस जगह हमारा हाथ मिलती है? ये हमारा हाथ नहीं होती है। ये कौन सी बात है कि एक आदमी, एक आपका चीफ मिनिस्टर चल रहा है तो उसके पीछे अंतराज है जो चल रहा है, 30-40 गाड़ियों का, 50 गाड़ियों का अंतराज है, लाइन बंद कर दीजिए। आपको पता है यूएस के अंदर अगर इस किस्म की कोई भी बकवास हो तो आप कुर्सी पे नहीं रहेंगे। और फिर आज तक मैं यही नहीं समझ सका, बैनर लगा दीजिए, हम शुक्रिया अदा करते हैं किस बात का कि रोड बना दी तो टैक्स क्यों देते हो? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा हम क्या बातें करते हैं, किस लिए ये सब कुछ कहते हैं। आज आपको कोई मुल्क कर्जा देने पे तैयार नहीं है। चाइना आपकी मदद को आ गया तो आपने कहा ओहो चाइना हमारा दोस्त है, बिल्कुल दोस्त है, बिल्कुल दोस्त है, मैंने नहीं इनकार किया कि वो दोस्त नहीं है। लेकिन याद रखिए आप जितना डिपेंडेंट होंगे कीमत उतनी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको ये लग रहा है कि हम आगे चल के सर्वाइव कर पाएंगे, मुश्किल है। अगर हमने चेंजेस नहीं की, इसेंशियल देखना छोड़ दिया मैंने, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। मंसूर को मैं बहुत शौक से सुनता हूं, मंसूर अली खान को बहुत शौक से सुनता हूं, मुझे लगता है वो बहुत अच्छे हैं। शाहजेब को मैं बहुत शौक से सुनता हूं, मुझे लगता है वो बहुत कमाल बात करते हैं। हामिद मीर साहब के तज्जिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काशिफ अब्बासी के तज्जिए बहुत अच्छे लगते हैं, मैर बुखारी साहब बहुत अच्छा बोलती हैं, यू नो रेस्ट ऑफ द पीपल देर अमेजिंग, यू नो जबरदस्त किस्म के पॉलिटिकल शोज करते हैं। कामरान शाहिद साहब इज रियली गुड, बहुत अच्छा करते हैं। आपको मालूम है अब दिन गुजर जाते हैं, 2-3-4 दिन गुजर जाते हैं कि मैं टॉक शोज नहीं देखता या सुनता। उसका रीजन यह है, मुझे मालूम है मैं 2 दिन बाद भी देखूंगा तो वही हाल होगा, एक नई खबर होगी, एक नई ब्रेकिंग होगी, उसमें इनका सबका कसूर तो कहीं भी नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूं, आप पूछिए इनमें से किसी एक को पूछ लीजिए, बीट एनीवन, किसी को पिक कर लीजिए, फ्रॉम हामिद मीर साहब टू यू नो मंसूर टू मेहर साहिबा टू काशिफ टू एनीवन, जस्ट पिक एनीवन ऑफ देम एंड आस्क देम हाउ डू दे फील। आपको जेन्युइनली बता, अ फ्रेंड ऑफ माइन तारिक, ही वर्क्स फॉर चैनल 24, उनका शो बहुत अच्छा होता है, 7 बजे आता है, मैं अक्सर उनको देखा करता था, अब भी देखता हूं। बड़े विगर से बोलता है वो, ही वॉन्ट्स टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस, लेकिन मसला क्या है, यहां तो सेंस की बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। यहां हर एक का अपना सच है और हर एक अपना झूठ इतने जोर से बोलता है कि उस पर सच का गुमान होने लगता है। किसी की आपको शक्ल अच्छी लगती है, किसी का प्रोपेगेंडा अच्छा लगता है, ये जब तक एक दूसरे से दस्तों गिरेबान नहीं होते बात ही नहीं तय हो पाती। मुझे बताइए हमने कितना टाइम जाया किया 75 साल के बाद। क्या हमारे मुल्क को इस जगह होना चाहिए था जहां हम हैं? और ये बारियां ही हैं जो लगी हैं। पहले पीपल्स पार्टी की बारी थी, फिर नून लीग की बारी थी, फिर पीपल्स पार्टी की बारी आ जाएगी, फिर नून लीग की बारी आ जाएगी, अब तहरीक इंसाफ भी इस दौड़ में शामिल हो गई। बारियां हैं ना, बारियां ही तो हैं। यहां मैं बता सकता हूं बट सुनेगा कौन, सुनेगा कौन? आपने तो अपने एनिमीज खुद डिसाइड किए हुए हैं। आपके एनिमीज तो कोई भी हो सकते हैं। जिसे आपके लीडर ने बता दिया कि वो एनिमी है, आपने उसे एनिमी मान लेना, खुद थोड़ी सोचना है। किस किस जगह हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसके बावजूद भी हम कहीं नहीं पहुंच पाए। इतना जबरदस्त टैलेंट हमारे पूरे मुल्क में, इसके बावजूद भी हम नहीं पहुंच पाए कहीं। क्या पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं आपको अंदाजा है उनकी तादाद कितनी है? इनमें से कितने लोग हैं जो लौट के आ सकेंगे? ये वो ब्रेन्स हैं जो पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे, लेकिन आप इनको मजबूर कर रहे हैं कि ये पलट के भी ना देखें। और ये वो लोग हैं जो जा सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कहीं नहीं जा सकेंगे, वो यहीं बैठ के गाड़ियों के आने जाने का तमाशा देखेंगे, वो कभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखेंगे, कभी बड़े बड़े जलसे देखेंगे, कभी फजूल किस्म के नारे देखेंगे, कभी ट्विटर और फेसबुक के ट्रेंड्स देखेंगे, कभी एक दूसरे को गालियां देते हुए लोग देखेंगे और अपने अपने घरों में बैठ के हैरान होंगे कि ये मुल्क सही कैसे होगा, क्या हमें नहीं पता कि क्या गलत है। लेकिन उसके लिए सच सुनना भी पड़ता है। हम सबको सच बोलने की बहुत आदत है, बहुत बोलते हैं हम सच, लेकिन जब सच सुनने की बात आती है तो हर आदमी इधर उधर हो जाता है और हर आदमी सब कुछ भूल जाता है। आपने क्या कहा यह भी भूल गए, क्या सुना यह भी भूल गए, कोई कुछ भी कह लेता है, मतलब यू टर्न ले लो ये ठीक है। क्यों ठीक है भाई? नहीं है ठीक, नहीं हो सकता। कैसे ठीक हो सकता है ये? क्या रियासत मदीना में किसी ने यू टर्न लिया? कभी लिया था? तो कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन यहां सोचना किसने? यहां तो हम एक दूसरे से इख्तलाफ करने का हौसला भी नहीं रखते, गालियां देते हैं एक दूसरे को, मरी हुई माओ को गालियां देते हैं, लोगों की इज्जतों के जनाजे निकालते हैं। और हमारे वो शोहदा जिनका सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, हमारा बस नहीं चलता कि हम उनके बारे में भी पता नहीं क्या क्या कहें। वो जिन्हें दूसरों ने आपको ये कह के हवाले किया कि ये बहुत बहादुरी से लड़ा है, उसकी जेब में वो रुक्का डाला, उसके ताबूत को परचम में लपेटा और आपको दिया, हम तो उस तक की भी तकरीम नहीं कर सके। फिर आप हम क्या हालात सही होंगे? गरीब का बच्चा स्कूल जाता है तो उसके नसीब में वही स्कूल है आज भी जिसमें उसके बाप ने पढ़ा था, और अमीर का बच्चा स्कूल जाता है तो फ्लाइट लेता है, जब वो वापस पलटता है तो इस मुल्क में एक ओहदा, किसी पार्टी का सरबरा या कोई और चीज उसका इंतजार कर रही होती है। वो लोग जिनको प्रोटोकॉल्स में लाया जाता है, हम उनकी तकारीर सुनते हैं, जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो उस पानी की चाय भी उबाल के नहीं पीते जो हमारे बच्चों के पेट में जाता है। उनकी चाय भी मिनरल वाटर से बनती है और शायद वो वाटर भी यहां का नहीं होता, वो जो खुशबू लगाते हैं वो हमारी मट्टी की नहीं होती। इसके बावजूद आप उन्हीं को सुनते हैं। अपने गिरेबान में झांकी और फैसला कीजिए। 75 सालों से इस बकवास का शोर करने वाले कि हमारे मुल्क में कुछ नहीं बदला, आपको लगता है कि हम प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है? हम सबसे बड़ा हिस्सा है इस मुल्क में प्रॉब्लम का, क्योंकि 75 साल से हम एक मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, एक और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भूल गए हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और याद रखिए, मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ एक है, एंड ही इज द फादर ऑफ द नेशन। उनके अलावा कोई भी करीब भी नहीं पहुंच पाएगा। और अगर किसी की खाम ख्याली है तो एक बार जिंदगी में जिन्ना की जिंदगी को पढ़ लेना। जिन्ना के पास सिवाय अपनी बात पे कायम रहने के और कोई रास्ता नहीं था। पाकिस्तान को हासिल करना बहुत मुश्किल था मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, लेकिन उसके साथ वो लोग थे जिन्होंने उस पे यकीन किया, और मोहम्मद अली जिन्ना को लोगों पे यकीन था, और यूं पाकिस्तान बन गया। लेकिन बनने के बाद हमने इसके साथ क्या किया, ये एक अलग कहानी। आइए मिलके अपने अपने सियासतदानों के नारे लगाएं, क्योंकि हमें पार्टी के झंडे इकट्ठे कर सकते हैं। अफसोस, जो झंडा सबसे बड़ा होना चाहिए वो तो अक्सर पार्टी के जलसों में नजर भी नहीं आता। हमें इकट्ठा होना है तो पाकिस्तान के लिए, और ये सब हमें जोड़ने वाले नहीं है, बिखेरने वाले हैं। अगर अब भी समझ नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। अपने तई आप फेसबुक पे लिख दीजिए, कह दीजिए, नारे लगा लीजिए, तनकीद कर लीजिए, लेकिन जब तक उठ के खुद तब्दील नहीं होंगे, खुद कोशिश नहीं करेंगे, तो कुछ तब्दील नहीं होगा। ये स्कूल्स वैसे ही रहेंगे, ये निजाम वैसा ही रहेगा। इन 75 सालों में हमने बाय डिफॉल्ट तरक्की की, उसकी बहुत बड़ी प्राइस पे की। हमारे वो अनसंग हीरोज जिनको हमने पॉलिटिकल बना के एक तरफ खड़ा कर दिया, कभी सोच के देखिएगा, कहीं ना कहीं हमारी भी ज्यादती है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इदारों को पॉलिटिकल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी सोचिएगा, क्या सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए हुआ बिकॉज इदारे पॉलिटिकल होना चाहते थे, या कोई चॉइस कभी बची ही नहीं? हमने कभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया ही नहीं, हम अपने इख्तलाफात भुला ही नहीं सके, हम टेबल पे आ ही नहीं सके। हमने हुकूमतें बनाई तो भी एस्टैब्लिशमेंट की मदद से। कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी है जो हम मानने को तैयार नहीं। कहा था ना मैंने शुरू में, हम सिर्फ सच सुनते हैं, सच बोलते हैं, सुनने की आदत नहीं। क्योंकि जब सच सुनोगे तो कुछ चीजें तुम्हें अपने लिए भी माननी पड़ेंगी, और हमारा कोई कसूर नहीं है। हम ये समझते हैं इन 75 सालों में जो कुछ हुआ, जैसा हुआ, उसमें हमने कुछ नहीं किया, तो ऐसा है नहीं। याद रखो, जब भी हमारी हिस्ट्री लिखी जाएगी, हम में से हर शख्स जिम्मेदार होगा ये वतन चंद लोगों का नहीं है, चंद हजार सियासतदानों का नहीं है, ये वतन उन करोड़ों पाकिस्तानियों का है जो हर रोज सुबह इस उम्मीद पर उठते हैं कि आज जिंदगी में कुछ तब्दील हो जाएगा। कभी एक लम्हे आंखें बंद करके ये सोचना कि हम कहां गलत हुए, हमसे मुराद वो नहीं, हम सब। हम अपने मुल्क में कभी कानून को फॉलो नहीं करते और दूसरे मुल्क के जहाज में बैठते ही लाइन सीधी बना लेते हैं। अपने मुल्क में जब कोई पुलिस वाला हमें रोकता है तो हम उसे ये बताते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, लेकिन अगर गैर मुल्क में कोई पुलिस वाला रोके तो हमसे ज्यादा ओबीडियंट कोई नहीं होता। दूसरे मुल्क में चलते हैं तो रैपर अपनी जेब में रखते हैं, अपने मुल्क में जगह जगह पान की पिचकारियां मारते फिरते हैं, दूसरे मुल्क में ट्रैफिक के लॉज को ओबे करते हैं और अपने मुल्क में जिस तरफ से चाहे घुस जाते हैं। दूसरे मुल्क में अगर हम जॉब नौकरी करते हैं तो वक्त से 5 मिनट पहले पहुंचते हैं और यहां घंटों देर हो जाए कोई मसला नहीं। दूसरे मुल्क में छुट्टी के दिन भी काम करते हैं, यहां तो काम वाले दिन भी छुट्टी कर लेते हैं। तो हमने क्या अपने मुल्क को अपना समझा है? मेरी बात अगर बुरी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन कसम खा के कहता हूं अगर हम उतना भी कर लेते ना जितना हम बाहर जाके दूसरे मुल्क में रह के दूसरे मुल्क के लिए करते हैं, हम कहीं बहुत आगे होते। और मुझे मत कहना कि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम बनाने वाले हम सब होते हैं। बात मोहब्बत की है, बात डिवोशन की है, बात ये मानने की है कि मुश्किल चॉइसेस क्या होती। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ऐसा ही होगा जैसा आज। आज जी, वंस अगेन वेलकम बैक। थोड़ी जरा लाइट लाइट बातें करते हैं सर। कोई शॉपिंग वॉपिंग करते हैं बाहर आप जाके, मतलब ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, लाइक आटा दाल चीनी वगैरह ये लेते हैं?
जाहिर है उसके बगैर जिंदा कैसे रहे?
नहीं तो मुझे बताए ना आपके आपको मालूम है कितने का आटा, आटा कितने किलो है?
आटा तकरीबन 170 से 190 तक।
190 रुपए किलो है?
170 से 190 मुख्तलिफ, उसमें
डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं।
कहाँ से ले रहे हैं? चक्की का ले रहे हैं। अच्छा, मैं तो शुगर का पेशेंट हूँ तो लिहाजा मुझे अपने लिए सिलेक्टेड ही लेना पड़ता है।
ओके ओके।
और कल मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे कहा यार ऑयली ऑयल। मैंने कहा, मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, मैंने कहा ये वो काम है जो किसी हद तक किसी भी एंगल से मेरे लिए मुमकिन नहीं।
आप ऑयली तो वैसे ही खा नहीं सकते ना?
नहीं, मतलब मैं खा सकता हूँ लेकिन अफोर्ड कौन करेगा उसे? सबसे अच्छा। बड़ी बात तो अफोर्ड, देखिए इस वक्त ऐसा हो गया साहिर भाई, जो कभी ज़कात दिया करते थे अब ज़कात लेने पे आ गए, कभी ज़कात दिया करते थे अब ज़कात लेने पे आ गए। ये लफ्ज नहीं है, ये हकीकत।
I know.
ये हकीकत है।
I know.
ये हकीकत है और इतनी तल्ख हकीकत है कि इस सरजमीन पे हम इस कदर हम गिर गए हैं। जहां 4 मौसम है, दुनिया का हर फल है, दुनिया की मतलब क्या कौन सी चीज है जो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हम नहीं है पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में नहीं है। काश के हम पाकिस्तान में हो जाए।
अच्छा, आपने कभी बाहर ट्रैवल किया पाकिस्तान से?
मैं सिर्फ उमरा करने के लिए गया हूँ और एक दफा मैं एक फिल्म के सिलसिले में लंदन गया था थोड़ी देर, वो भी बदर साहब लंदन में से, कुछ मामलात ऐसे थे उसके लिए मैं गया था, 2-3 दिन में वापस आ गया।
तो लंदन देखा था उस वक्त?
मैं बर्मिंगम गया था, सिर्फ
बर्मिंगम गए थे। और कितने दिन के लिए गए थे? 2-3 दिन?
6 दिन टोटली मेरे लगे।
अच्छा, और ये कब की बात है?
ये है तकरीबन 80s की बात
है। 80s की बात है। तो उस वक्त मुख्तलिफ था लंदन, बर्मिंगम मुख्तलिफ था,
वहाँ पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है,
पाकिस्तानी बहुत ज्यादा, वो तो बहुत ज्यादा थे मीरपुरी खास तौर
पे। भी एक हमारे पाकिस्तानियों के कारनामे एक शख्स था, रोज आ जाता था, अकबर खान उसका नाम था।
अच्छा।
क्योंकि मुझे वो भूलता नहीं है। वो आ जाए बड़ी लंबी सी गाड़ी उसके पास, वो 2-3 बजे वहां पे आ जाता था, शाम रात को 10-11 बजे वापस जाता था। मैंने उस दिन एक दिन उससे पूछ लिया, मैंने कहा अकबर भाई क्या यार आप करते क्या हो? कहता मुझे करने की क्या जरूरत है, मेरे 12 बच्चे हैं, 21 पाउंड हफ्ता मिलता है, एक का गुजारा अलाउंस, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यार बात सुने, यही जुल्म है अपने साथ, आप अपने बच्चों के साथ और अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। तो वो हंसने लग गया। तो बात ये है कि हम अपनी जो अपनी चालें हैं ना, वो कहीं भी चल सकती है।
ये बताइए आपको गाने में कौन पसंद रहा हमेशा, गुलुकार?
देखिए मैं सबसे मतलब ऑल द वर्ल्ड,
हाँ हाँ कहीं भी बता दें,
मुझे तलत महमूद बहुत पसंद
है। तलत महमूद। और पाकिस्तान में कौन पसंद है?
पाकिस्तान में मुनीर हुसैन से,
मुनीर
हुसैन सलीम रजा से,
सलीम रजा ओके।
और फिर मेहदी
हसन खान साहब।
हाँ साहब अच्छा, मैंने मुझे थोड़ा सा मैंने इतना काम नहीं किया मतलब, लेकिन मुझे ये एहसास है कि मैंने तकरीबन मेहदी हसन साहब को भी गवाया है।
अच्छा।
मैंने नूरजहान को भी गवाया, मैंने मेहनाज को भी, मैंने
मैडम नूरजहां कैसी थी मुलाकात में?
यार वो तो मतलब वो मुझे इस दुनिया की खातून ही नहीं लगती थी, इस कदर लविंग, इस कदर जैसे जैसे अपने बच्चों, मुझे तो खैर वो बेटा ही कहती थी क्योंकि मैं उनके बेटे का नाम हूँ।
अच्छा हाँ ट्रू ट्रू।
तो मैं तो एक दफा ऐसे हुआ, मैं गाना मुझे करवाना था तो इनके घर में, मुझे ये भी एजाज हासिल है कि मैंने इनके घर में रिहर्सल की है।
माशाल्लाह माशाल्लाह।
और इनके घर में इन जो खाना ये लोग खाते हैं आम आदमी नहीं खा सकता, यानी इतना खूबसूरत तरीके से बना हुआ,
कोई शक नहीं कोई।
तो मैं उनके घर में, मुझे 2-3 दफा खाना खाने का भी इत्तेफाक हुआ। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा यार मम्मा, मैं मम्मा ही कहता था, मैंने कहा मम्मा बात सुने, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ ना, तुम तो मुझसे तो पैसे कुछ कम लो। कहती हुई अड़िया, उसका उनका एक स्टाइल था, जब औलाद जो है कमाने के काबिल नहीं होती तो माँ बाप उसको देते हैं,
जब कमाने के
और जब कमाने के काबिल होते वो माँ बाप को देते हैं। तो उसने मुझे लाजवाब कर दिया। तो ऐसी खातून थी, लेकिन बात पता क्या है, मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई दुल्हन एक रात की, दो गाने उन्होंने गाए थे और वो दो गाने तारीख का हिस्सा है, ओ जाने वाले मैं तेरे कुर्बान
खुदा, ओ जाने वाले मैं तेरे कुर्बान खुदा,
दो गाने, लेकिन वो दो गाने जो थे फिल्म की जान थे,
कोई शक नहीं।
तो बस फिर मेहदी हसन जी, मेहदी हसन एंड में, मैंने एंड में मेरा ख्याल है लास्ट गाना उन्होंने मेरी फिल्म का गाया था, पहला अल्लाह दूजा मोहम्मद तीजा नाम अली, इश्क की अजरक बांध के सर पे नाचूं गली गली। असल में ये गाना मैंने लिखवाया था अलन फकीर के लिए।
अच्छा।
अलन फकीर मेरी एक फिल्म में, मुझे ये भी एजाज हासिल है कि अलन फकीर वाहिद एक फिल्म है जिसमें उसने गाया भी है और उसने पिक्चराइज भी हुआ है, वो तूफान में।
अच्छा मैं आपको ये बात बताऊं कि हाँ साहब, मेहदी हसन साहब का एक गाना है, पियो और जियो जब तक दम में है दम।
हाँ
ये गाना याद है आपको?
बिल्कुल याद है।
और ये पता है किस पे पिक्चराइज हुआ है?
ये मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, देखा हुआ है मैंने।
तो आप ना करें सर, ये बदर मुनीर पे पिक्चराइज हुआ है।
याद आ गया,
बदर मुनीर साहब पे।
बिल्कुल बिल्कुल।
और ये ईस्टर्न स्टूडियोज के अंदर पिक्चराइज हुआ था।
वो ईस्टर्न वो जमाने में ना, वहाँ उस वक्त 3-4 फिल्में ऐसी थी जो यहाँ पे बन रही थी।
तो अच्छा कोई गाना तो गुनगुनाइए जो आपको बहुत पसंद है, जो आप अक्सर गाते हैं।
मैं असल में बस इस चीज से बिल्कुल महरूम हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल गा नहीं सकता।
नहीं, उस दिन तो आपने गाया था, तो कोई बात नहीं। कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो और आप बोलते हैं यार मैं अक्सर गाता हूँ, मेहदी हसन खान साहब को सुना दीजिए, मैडम नूरजहां को सुना दें, किसी का भी।
अच्छा मुझे गाना जो सबसे ज्यादा पसंद था वो था तलत महमूद का।
कौन सा?
हुस्न वालों को ना दिल दो ये दगा देते हैं, जिंदगी भर के लिए रोक लगा देते हैं, बस इतना ही कुछ है।
तो गाइए ना।
नहीं मैं गा नहीं सकता।
वो तलत साहब का तो वो गाना बहुत अच्छा है, मेरे दिल कहीं और चल।
वो भी नहीं, नहीं तलत साहब ने तो देखे मखसूस गाने गाए हैं, लेकिन क्या बात है,
कमाल गाए, कमाल।
मतलब जो लोग रफी और जो शख्स रफी और मुकेश के होते हुए अपना मुकाम रखता हो तो उसमें कोई बात तो थी।
बिल्कुल।
और पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो है मेहदी साहब तो खैर मतलब है उनके बारे में बात करना हम जैसे लोगों के लिए कोई वो भी नहीं है। वो बहुत बहुत बड़े उस्ताद थे, वाकई उस्ताद थे, और इतने ही नफीस आदमी, इतने ही नफीस आदमी, मलंग बिल्कुल, कोई उसमें कोई ऐसी। अच्छा मुझे ये थोड़ा सा बस मेरे शौक में ये चीजें थी, मैं बड़े लोगों में बैठा हूँ, तनवीर नकवी साहब, कतील शफाई साहब, रशीद अतरे साहब, फिर पिशावर में सैयद फारिग हुसैन बुखारी, सरदार खान फना, मैं इन लोगों में बैठा हूँ, म्यूजिक में भी बहुत सारे लोगों में मैं बैठा हूँ, तो मुझे कुछ थोड़ा सा इसका सेंस हो गया. मेरे गाना जो है ना, मेरी फिल्म के बारे में तो मैं इतनी बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मेरा गाना देखने के लिए लोग आते थे.
रियली
रियली मेरे गाने जब मैं पिक्चराइज करता था तो लोग आते थे देखने के लिए स्टूडियो के अंदर, और फरमाइश करते यार आज गाने तो दिखाओ. तो ये अल्लाह की तरफ से भी है. और फिर कुछ उस असाज़ा में
ये साहब कैसे लगते थे आप?
यार वो बहुत, वो भी देखे मेरी
कमाल आर्टिस्ट थे.
वो जो है ना, वो उन्होंने जो गाया है ना, वो दूसरा कोई गा नहीं सकता,
कोई भी नहीं गा सकता. मैं
उन्होंने जो गाया.
अच्छा, मुझे ना ये सब बहुत पसंद है
यार. वो पता क्या बात है, वो टाइप नहीं था उनका. वो हर गाना गा लेते थे, लेकिन एक 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 रोमांटिक उसमें नोट होता था उनके गाने में.
हाँ बिल्कुल होता था. उनका मुझे गाना याद है, जी रहे हैं हम तन्हा, बहुत खूबसूरत. और
नहीं, वो तो असल में पता क्या बात है,
उनका ये गाना और बहुत अच्छा था. मेरे ख्याल में आग आग और खून का था. मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा.
यस.
ना मेरी सुबह है ना मेरी शाम है, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा. मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा. बहुत अच्छा गाया करते थे
वो. असल में पता क्या बात है, वो एक ठहराव था उनकी एक ठहराव था, यानी एक तो.
अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा आर्टिस्ट था जो बहुत अच्छा गाना पिक्चराइज करवाता था?
वही सबसे ज्यादा कौन करा सकता
है? हाय हाय हाय, कमाल है कमाल. ये बात तो बिल्कुल सही है, उनसे बेहतर कोई भी नहीं गाना पिक्चराइज.
सवाल ही नहीं पैदा होता. इंडिया में कॉपी किया उसको, जतिंदर जैसे लोगों ने कॉपी किया उसको.
आई थिंक मुझे तो लगता है राजेश खन्ना साहब ने भी कॉपी किया.
सबने किया, मेरी बात सुनो. मेरी वही साहब से आखिरी दिनों में बड़ी बड़ी अच्छी
मुलाकात रही,
बड़ी अच्छी गपशप होती थी.
ओके.
वो शाम में आ जाते थे हमारे ऑफिस.
ओके.
बहुत ज्यादा वो, अब कुछ बातें ऐसी हैं वो नहीं करनी.
जी जी बिल्कुल ठीक.
वो आते थे शाम को, आके बैठ जाते थे, और मुझे दुख होता था. उनको उनको गिला था अपने दोस्तों से, जिनको जो जिस उनकी वजह से जिन्होंने बड़े नाम कमाए, लेकिन वक्त पे उसको यही गिला था उनको. ना तो उनको पैसे की कमी थी, ना उनको किसी और
जाहिर है किसी चीज की कमी नहीं,
किसी चीज की भी कमी नहीं थी. यानी वो शख्स था जो सोने का चम्मच, लोग बातें करते हैं लेकिन वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था वो.
जी जी.
पाकिस्तान फिल्म्स के नाम से उनका
निसार, फिल्म निसार, हो गया. निसार मुराद साहब उनके फादर.
ना ये नार सैनमा उनके पास ही होता था तकरीबन. बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि वो कहते हैं ना, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे. आप देखो ना, मैडम कहाँ गई.
अब तो वैसा कोई भी नहीं है, अब तो वैसा कोई नहीं
है. नहीं अब तो, अब आप मानेंगे, आप मानो मैं गाना नहीं सुनता.
आई एम श्योर मैं मान सकता हूँ.
उसकी वजह आप गाना नहीं है, एक गिटार है, टंग 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 और बस.
नहीं नहीं ऐसा नहीं,
नहीं
भी बहुत है, गाने वाले.
बहुत कम है. बात ये नहीं, देखे हम अक्सरियत पे बात करेंगे. आप 100 में से 2 गाने या 5 गाने निकल आए तो कोई ऐसी बात नहीं. पहले 100 में से 95 होते थे, 5 जो थे वो भी.
ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मैं मानता
हूँ. बात ये नहीं, बात पता क्या है, देखे मैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरा इस शोबे से ताल्लुक रहा है, लिहाजा म्यूजिक का थोड़ा सेंस भी है मुझे. बात ये है कि एक चीज है लय, लय सुर, ये 2 चीजें हैं. जिसके पास ये है, मेहंदी हसन साहब के पास क्या था? सुर था ना, लय थी.
ऑफ कोर्स.
मैडम के पास क्या? मैं खैर मैडम तो, मैडम जो है ना वो उनकी क्लास भी अलग है. मैडम
वैसा कोई भी नहीं है. वो वैसा आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन लाइक मैडम नूरजहां. सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता.
वो उनको कोई भी गाना दे दो, कोई भी गाना दे दो, वो इतनी आसानी से गा लेती थी, इतनी आसानी से. यानी अब तो बहुत आसानी है ना, आप म्यूजिक ट्रैक कर लो, आपके वोकल है आप करके चले जाए, मेरे वोकल है मैं करके चला जाऊं, बाद में मिक्स हो जाएगा, गाना हो गया. वो गाना जो उस वक्त की बात कर रहा हूं जब डायरेक्टली नेगेटिव पे होता था गाना मैडम उस वक्त यानी एक रिटेक का मतलब है, उस जमाने में 200 या 300 रुपए का वो एक रोल आता था। तो उस जमाने में भी आप देखो मैडम के गाने तो आप सुने,
छोड़ दें हाँ,
मैडम के गाने तो आप सुने,
ऑफ कोर्स
मैडम को सुन ले, आप सलीम रजा को सुन ले,
कमाल,
आप मुनीर हुसैन को सुन ले, फिर आप थोड़ी सी एक अलग उस पे आ जाए, अलग जैसे
इखलाक अहमद साहब
आए, वो उन्होंने अपना उनका टाइप था। अच्छा मजे की बात ये है कि
मसूद राणा साहब
मतलब ऊपर की सुर में शायद ही कोई रफी के बाद वो आदमी था जो ऊपर के सुर में गा लेता,
बिल्कुल सही,
रफी साहब के बाद, यानी उनको जितनी मर्जी है ऊपर ले जाओ, सातवें तक ले जाओ वो गा लेते थे और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी आसानी से,
कमाल लोग थे ये सब के सब। ऑलराइट, वी आर टॉकिंग टू असगर भाई, टाइम तो खत्म हो रहा है लेकिन लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद थोड़े से कुछ सवाल आते और एंड देन वी विल से एडियोस टू यू। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड आई एम टॉकिंग टू असगर भाई एंड कुछ चीजें हैं जो डिस्कशन में अभी रह गई हैं तो वो हम अगले शो के लिए उठा रखते हैं, बट राइट नाउ लेट मी टॉक टू हिम एंड जिससे कि ये क्या कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज, कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे आप सर?
बस यार, इस पाक धरती की से मोहब्बत करो और एक दूसरे से मोहब्बत करो और बस नफरतें खत्म करो। अगर इस आगे बढ़ना है तो नफरत की जिंदगी से निकलो। अगर जिंदा रहना है, कौम के सूरत में जिंदा रहना है तो मोहब्बत का प्रचार करो। इंशाल्लाह पाकिस्तान जन्नत है और जन्नत होगा
इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं और अल्लाह ताला ने इसको पूरा किया। I appreciate that. Thank you.
मेरी भी ख्वाहिश थी कि आपसे मिलूं और आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी होगी। मैं आपको बहुत जमाने से सुन रहा था।
Thank you.
जब आप मॉर्निंग शो करते थे
बहुत बहुत
तो मैं उस वक्त से आपको सुन रहा था और अल्लाह ने आज आपके सामने बिठा दिया।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, that was असगर भाई। All right, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं उनको कभी भी अपने दिल से दूर नहीं करता। यूजली मैं ये गाना नहीं लगाता हूँ लेकिन आज लगा रहा हूँ एंड आई विल टेल यू व्हाई। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बहुत स्ट्रेंज है, यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट यू नो मैं उसको लफ्ज़ों में बयान कर सकूँगा। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि ये गाना जो मैं व्हिच आई एम अबाउट टू प्ले, इसमें मुझे पता नहीं क्यों हमारा बीता हुआ जो कल है उसकी खुशबू आती है। हमने जिन लोगों के नाम लिए, फ्रॉम मैडम नूर जहां टू यू नो मेहदी हसन खान साहब टू उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब टू किशोर कुमार, मोहम्मद रफी टू तलत महमूद साहब टू लता मंगेशकर जी टू अखलाक अहमद साहब टू ए नैयर साहब टू मसूद राणा साहब टू सलीम रजा साहब माला साहेबा टू एवरी वन, आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले दिस फॉर देम। आज ये मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है उन तमाम लोगों के लिए जो एक जमाने में सिंगल सिनेमा पर जाके पिक्चर्स देखते थे। अभी ये मेट्रोप्लेक्सेस नहीं बने थे, अभी 1000 रुपए का टिकट नहीं था,
धक्के खाते थे, लाइनों में लगते थे।
अभी 20 रुपए की गैलरी थी, 50 रुपए का टिकट था, 10 रुपए का टिकट था। अभी फिल्म्स डिफरेंट हुआ करनी थी, हम फिल्म्स को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते थे। फिल्म हम इसलिए देखते थे क्योंकि वो हमें थोड़ा सा हकीकत से दूर ले जाती थी। फिर हम कुछ ज्यादा पढ़ लिख गए, फिर हमने हर चीज बदल दी। आज खैर जाने दीजिए, पुरानी याद है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो याद रखिए, वक्त कहीं ना कहीं आपको पुकारता जरूर है और आप पीछे मुड़ के देखते जरूर हैं।